This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
देवी सती के अंग व आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गए। हम सब जानते हैं कि ये पवित्र स्थान आज के समय में भारत की सीमा के बाहर अन्य देशों में भी आते हैं। अभी तक हम पाकिस्तान के हिंगलाज, श्रीलंका के इंद्राक्षी, बांग्लादेश के सुगंधा सुनंदा उग्रतारा, नेपाल के गंडकी शक्तिपीठ मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। इस एपिसोड में हम फिर से चल रहे हैं धरती के स्वर्ग और पावन भूमि नेपाल में, जहां महादेव और देवी माँ की कृपा सदैव रही है। महादेव यहां पशुपतिनाथ रूप में विराजमान है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर शिव भक्तों में अति प्रसिद्ध और मान्य है।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे।
नेपाल का उल्लेख विभिन्न पुराणों में श्लेष्मांत वन के रूप में मिलता है। यहां शिव शक्ति एक रूप में विराजमान हुए। ये क्षेत्र साधकों को सिद्धि देने वाला है। शक्ति संगत तंत्र में कहा गया है, जटेश्वरम समारभ्य योगे शांतम महेश्वरी नेपाल देशो देवेशी साधिका नाम सुसिद्धिदा। जटेश्वर से प्रारंभ होकर योगेश तक साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला नेपाल देश है। ये देश आज भी हिंदू संस्कृति में रचा बसा है। जब भगवान विष्णु ने महादेव को शोक से बाहर निकालने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर के अनेकों भाग किए, उस समय माँ सती के दोनों घुटनों का निपात काठमांडू में बागमती नदी के किनारे हुआ। यह स्थान गुहेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुहेश्वरी शक्तिपीठ की शक्ति है महामाया और शिव यानी भैरव को कपाल के नाम से पूजा जाता है। इनकी यहाँ अत्यधिक महिमा है। इस मंदिर के गर्भगृह में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश मान्य है। ओम गुह्यते गुह्य गोप्त्री तुम घृणास्म कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी त्वत् प्रसादात महेश्वरी। गुह्येश्वरी नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, गुह्य अर्थात गुप्त या रहस्य, अर्थात जो माँ रहस्यवादी और रहस्यमयी है, और ईश्वरी यानी सभी देवी देवताओं की ईश्वरी, ईश्वरों की भी अधीश्वरी यानी जो देवी ईश्वरों और देवी देवताओं के द्वारा पूजित हैं और उनकी शक्ति हैं। ललिता सहस्त्र नाम में देवी के 707वें नाम को गुह्य रूपिणी के रूप में अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है देवी का रूप मानव जागरूकता से परे है और ये एक रहस्य है। वे ही महामाया हैं। देवी महामाया की महिमा का वर्णन करने के लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं और बुद्धि सीमित है, फिर भी हमारे विभिन्न ग्रंथों जैसे दुर्गा सप्तशती आदि में जिस प्रकार देवी महामाया की महिमा का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार ही मैं आपसे उनकी महिमा कहती हूँ। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में राजा सुरथ मेधा मुनि से पूछते हैं कि भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है। ऋषि कहते हैं, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वो नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। ब्रह्मा में सृष्टि करने की, विष्णु में पालन करने की और शिव में संहार करने की शक्ति है। सूर्य संसार को प्रकाश देते हैं। शेषनाग और कश्यप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति है। अग्नि में प्रज्वलन शक्ति और पवन में गतिशील करने की शक्ति है। तात्पर्य ये है कि सभी में जो शक्ति विराजमान है वो आद्या शक्ति महामाया ही है। भगवान विष्णु उनका आश्रय पा निद्रा को प्राप्त होते हैं। भगवान ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं। उनके प्रभाव से ही शिव शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उन शक्ति रूपिणी की कृपा ना हो वो चाहे कुछ भी हो शक्तिहीन हो जाता है। वही आद्या शक्ति महामाया इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और उनका पालन भी करती है। वही आद्या शक्ति इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार कर लेने में संलग्न रहती है। सभी देवता अपने कार्य में तभी सफल होते हैं जब आद्या शक्ति महामाया उन्हें सहयोग पहुंचाती है। इससे सिद्ध होता है कि ये शक्ति ही सर्वोपरि है। निराकारा च साकारा सैव नानाभिधा स्मृता, वे सगुणा साकारा निर्गुण निराकार के भेद से अनेक रूपों में जानी जाती हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवती आद्या शक्ति महामाया और गुह्येश्वरी शक्तिपीठ की महिमा का आख्यान विस्तार से वर्णित है। यहाँ बताया गया है कि जब तक भगवती सती के प्रत्येक अंग गिरकर समाप्त नहीं हुए तब तक भगवान शिव भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते हुए जब भगवान शंकर नेपाल में पहुंचे तो वहां पर भगवती सती के शरीर के दोनों घुटनों का निपात हुआ। यहाँ की शक्ति गुह्येश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर चंद्रघंटा योगिनी तथा सिद्धेश्वर महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ शिव शक्ति एक रूप में विराजमान है। सृष्टि के आरंभ में इस स्थान पर शक्ति सिद्ध पीठ में इंद्र आदि देवताओं ने आकर शक्ति की आराधना करते हुए कठोर तप किया। भगवती गुह्येश्वरी महामाया ने प्रकट होकर देवताओं को वरदान दिया, आप लोग सत्य त्रेता द्वापर इन चारों युगों में 33 कोटि देवता के नाम से प्रख्यात होंगे। विश्व में आप लोगों की पूजा होगी तथा आप सभी आराधकों को इच्छित फल दे सकेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर देवगण प्रसन्न होकर सदैव शक्ति की आराधना में रत रहते हुए स्वर्ग को लौट गए। फिर युग बीते। एक अन्य मान्यता के अनुसार कभी यहाँ श्लेषमांत वन हुआ करता था, जहाँ कुंती पुत्र अर्जुन की तपस्या पर भगवान शिव ने किरात रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। तो सोचिए, जो स्थान समस्त देवताओं की तपस्थली रहा हो वो स्थान कितना ऊर्जावान होगा। यहाँ समस्त देवताओं ने वरदान देने की शक्ति प्राप्त की, वहाँ की शक्ति कितनी अद्भुत होगी। ऐसा क्या होगा जो यहाँ आकर मानव को प्राप्त ना हो। गुह्येश्वरी देवी शक्तिपीठ और नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के तट के पास स्थित है। गुह्येश्वरी शक्तिपीठ लगभग 2500 साल पुराना है। जो श्रद्धालु श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो अवश्य ही देवी गुह्येश्वरी के भी दर्शन करते हैं। नेपाल के प्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों से पहले माता गुह्येश्वरी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। इस परंपरा का पालन वहां के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा अभी भी किया जाता है। अर्थात सबसे पहले गुह्येश्वरी शक्तिपीठ जाकर देवी माँ की पूजा की जाती है, उसके उपरांत ही अन्य मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। देवी माँ को यहाँ विराजी देवी और गुह्या केसरी के नाम से भी पूजा जाता है। इस मंदिर का तांत्रिक महत्व भी है। बहुत से तांत्रिक गुह्येश्वरी शक्तिपीठ में आकर गुप्त साधनाएं और तंत्र साधना करते रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस महत्वता के कारण भी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। काली तंत्र, चंडी तंत्र, शिव तंत्र रहस्य के पवित्र ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख तंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में आता है। देवी गुह्येश्वरी का विश्व रूप उन्हें अनगिनत हाथों वाली कई और अलग अलग रंग वाली देवी के रूप में दिखाता है। एक अन्य मान्यता ये है कि ये षोडशी मंत्र का गुप्त 16वां अक्षर है। 137वें श्लोक में उल्लेख है, सरस्वती शास्त्रमयी गुह्यंबा गुह्य रूपिणी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुहेश्वरी शक्ति पीठ स्थित है, जहां देवी सती के दोनों घुटनों का निपात हुआ था। ये मंदिर यहां सतयुग से स्थापित है। देवी गुहेश्वरी नेपाल की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ के कई हिंदू परिवारों की कुलदेवी भी है। प्राचीन मंदिर का निर्माण लिच्छवी काल के राजा शंकर देव के साम्राज्य के दौरान एक तांत्रिक नरसिंह ठाकुर की मदद से किया गया था। मंदिर को बाद में 1654 ईस्वी में राजा प्रताप मल्ला ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक लंबकर्ण भट्ट की सलाह से पुनर्निर्मित किया। ये काठमांडू में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। आइए अब माँ गुहेश्वरी महामाया के दर्शनों को चलते हैं। नेपाल के सुंदर पहाड़ी रास्तों के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम मंदिर तक पहुँचते हैं। सुंदर वादियों के मध्य में बना ये मंदिर स्वर्ग में होने का एहसास दिलाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचने से पहले हमें छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं। मुख्य मंदिर से पहले बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। बाबा गोरखनाथ महादेव और देवी महामाया के सबसे मान्य शिष्यों और भक्तों में सम्मिलित हैं। गोरखनाथ मंदिर के आगे एक बड़ा त्रिशूल बना हुआ है, जो शिव शक्ति का प्रतीक है। माँ के दर्शनों से पहले बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर भक्त मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गुहेश्वरी मंदिर भूटानी पैगोड़ा वास्तुकला शैली में बना काफी भव्य मंदिर है। मंदिर को फूलों की आकृति और संरचनाओं के साथ सुंदर तरह से सजाया गया है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर माँ की बड़ी बड़ी सुंदर आंखें बनी हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम महामाया की नजर में हैं। माँ हमको देख रही है। अब हम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम एक विशाल मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के निर्माण में सोने चांदी का भरपूर उपयोग किया गया है। ये मंदिर अद्भुत प्रकार से सुंदर है। इसके चारों ओर सोने से सुसज्जित माँ के शेर बनाए गए हैं। मंदिर की ऊपरी छत के चारों ओर सोने चांदी से निर्मित अद्भुत कलाकृतियां हैं। यहाँ का वातावरण भक्तिमय है। इस मंदिर की एक विशेष बात है कि इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र है, जिससे हमेशा पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यहाँ की कलाकृतियां भी विशेष रूप से सुंदर हैं। कछुए की आकृतियों पर बने बड़े बड़े स्तंभ और उन पर शेर और बाघ की मूर्तियां बनी हुई है, जो सोने से अलंकृत है। ये मंदिर काठमांडू में सबसे सम्मानित मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर स्त्री शक्ति को दर्शाता है और देवी पार्वती को समर्पित है। मंदिर में दिव्य नारी ऊर्जा शक्ति है। इसे सबसे शक्तिशाली तंत्र पीठ माना जाता है, क्योंकि ये सहस्त्र शमशान भूमि के ऊपर बनाया गया है। इस मंदिर के लिए एक विशेष मान्यता है कि यदि यहाँ विवाह होता है तो जोड़े 7 जन्मों के लिए साथी बने रहते हैं। जैसे देवी सती ने शिव से विवाह किया और अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और सदा उनके साथ रहती हैं। महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी गुहेश्वरी मंदिर में प्रार्थना करती हैं। यहाँ की गई पूजा से शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। आइए अब प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। इस पवित्र मंदिर की सुंदरता और ऊर्जा का वास्तविक सार इस गर्भगृह में प्रवेश करते ही मिल जाता है। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ के दोनों घुटने आज भी गर्भगृह में पिंडी रूप में विराजमान है। गर्भगृह अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। मुख्य रूप से गर्भगृह के मध्य में एक श्रीयंत्र के ऊपर माता की सोने से ढकी पिंडी की पूजा की जाती है, जो कि एक कलश के जैसी प्रतीत होती है। यहीं पर देवी की मुख्य पूजा की जाती है। ये पूरा स्थान चांदी और सोने की परत से ढका हुआ है। इस दिव्य स्थान के साथ ही एक तालाब है, जिसे भैरव कुंड कहा जाता है। यहाँ एक सुंदर प्रथा है कि भक्त अपने हाथ को तालाब के अंदर डालते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे पवित्र मानकर परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर के पास ही सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान ब्रह्मा ने शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। ये सामान्य हिंदू, बौद्ध, नेवार समुदाय और विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। हर साल नवरात्रि में गुहेश्वरी शक्तिपीठ में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत, भूटान सहित कई देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह नवरात्रि में 10 दिवसीय दशैन उत्सव मनाया जाता है। इसमें माता की भव्य सवारी पालकी पर निकलती है। हर साल भारत से 6,00,000 श्रद्धालु पशुपतिनाथ आते हैं और शक्तिपीठ के दर्शन भी करते हैं। गुहेश्वरी माता की एक भव्य यात्रा निकाली जाती है, जो कि एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये यात्रा शक्तिपीठ से शुरू होती है, फिर माँ पशुपतिनाथ मंदिर में जाती है, उसके बाद हनुमान धोका से होते हुए बसंतपुर में समाप्त होती है। ये परंपरा आदि काल से चली आ रही है। बौद्ध नेवार समुदाय गुहेश्वरी मंदिर में विभिन्न पूजा करते हैं। नेवारी भोज भी त्योहारों के दौरान मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेवार बज्राचार्य बौद्ध गुहेश्वरी को ब्रज योगिनी के रूप में पूजते हैं। ये मंदिर सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। आइए अब जल्दी से जानते हैं कि हम यहाँ सरलता से कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पर यहाँ पर हवाई यात्रा करने के लिए भारतीय यात्रियों को पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होगी। रेल मार्ग से यहाँ आना संभव नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच कोई सीधा रेल संपर्क नहीं है। सड़क मार्ग पर आने के लिए राजमार्गों के माध्यम से भारत से यात्रा करने वाले आगंतुकों के लिए 4 बॉर्डर क्रॉसिंग है। आप दिल्ली से काठमांडू तक बस या कार से जा सकते हैं और सड़क मार्ग से जाने में कम से कम 20 घंटों का समय लगता है। यहाँ रुकने की हर स्तर की व्यवस्था उपलब्ध है। आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहाँ स्थित है काली घाट शक्तिपीठ, जहाँ पर देवी सती के दाहिने पैरों की उंगलियों का निपात हुआ था।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @htsmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।